दंडोत वंदन अनकुमार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखे मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की अपार कृपा है हम लोगों के ऊपर कि उन्होंने दुखों से छूटने के लिए और परम सुख पाने के लिए उन्होंने सुखमणि प्रदान किए। सुखमणि अर्थात परम सुख, परम सुख अर्थात आनंद, अनंत नाम परमात्मा का है। सुखमणि कह दो परमात्मा कह दो एक ही बात है। जिसने सुखमणि को प्राप्त कर लिया वह वाहेगुरु को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं, संत शरण जो जन परै सोजन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत शरण जो जन परै, जो व्यक्ति संत महापुरुष के शरण में जाते हैं उसे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेवा को दोई भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम। संत न होते जगत में जल मरता संसार। ऐसा समझो यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि इस क्षणभंगुर शरीर से मृत्यु से पहले पहले परमपिता परमात्मा को पा लें तो उसे संत के शरण में जाना ही पड़ेगा। संत के शरण में जाए बगैर परम कल्याण अर्थात परमात्मा की अनुभूति दर्शन दीदार महाप्रकाश हो ही नहीं सकता। एक समय की बात है, राजा जनक के मन में जिज्ञासा हुआ कि मैं भी उस परम सुख सुखमणि को प्राप्त करूं। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया कि मेरी इच्छा है कि सुखमणि को प्राप्त करूं। सभी विद्वानों ने सलाह दिया कि आप कोई ऐसे संत जो आप जपह अवरह नाम जपावे, ऐसा संत जो साधना के करके और प्रभु की कृपा से, दोनों ही आवश्यक है। सेवा से मन शुद्ध होता है, सिमरन से मन की चंचलता दूर होती है और ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान से अपने स्वरूप का बोध होता है। विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह वैसन पाइए, कहो नानक बाहल उड़ाइए। सेवा के बगैर मन शुद्ध नहीं होता और सिमरन के बगैर मन के अंदर जो वासना है, कभी मनुआ ऊब चढ़ता है, कभू जाए प्याले, लोभी मनुआ थिर न रहता है चारे कुंटा भाले। जो मन की चंचलता है, मन में जो वासना है, ये प्राप्त कर लूँ वो प्राप्त कर लूँ, दूसरे में सुख की भावना करना, यही वासना है कि हमको पदार्थों से सुख मिलेगा, पुरुष से सुख मिलेगा, स्त्री से सुख मिलेगा, संसार से सुख मिलेगा, जगत से सुख मिलने की चाह, ये वासना है, और आत्मा से सुख मिलने की चाह, ये साधना है। दो बातों को ठीक से ख्याल रखना। जब तक तुम्हारे मन में ये है कि हमको जगत से सुख मिलेगा, धन से, संपत्ति से, पदार्थों से, शरीर से, इंद्रियां से, मन से, बुद्धि से, आत्मा के अलावे और किसी से सुख मिलने की जो चाह है वो वासना है, और आत्मा से ही आनंद की अनुभूति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा चाह करना और उसकी प्राप्ति के लिए चल पड़ना, यह साधना है। साधना से आत्मा की अनुभूति होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, और वासना से व्यक्ति संसार के चंगुल में और फंसकर अपना जीवन समाप्त कर बैठता है, अपना जीवन दुखी कर लेता है। तो सेवा से मन शुद्ध होता है और सिमरन से वासना की समाप्ति होती है। उसके बाद किसी संत महापुरुष के शरण में जाने से ब्रह्म ज्ञान होता है। गुरु महाराज साफ कह रहे हैं, संत शरण जो जन पर है सो जन उधरन हार। जो अपना कल्याण चाहता है, उधार चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं भी उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करूं, हमारे अंदर भी वो महाप्रकाश हो जाए, जिस प्रकाश के होने से जन्म जन्मांतरों का अंधकार, अविद्या, अज्ञान नष्ट हो जाए, तो उसको किसी न किसी संत के शरण में जाना ही पड़ेगा। राजा जनक बहुत से संतों को बुलाए, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हुआ। राजा जनक ने एक शर्त रख दिया कि जो संत हमको ज्ञान करा देगा वो जो कुछ मांगेगा, राज्य मांगेगा राज्य दे देंगे, मन मांगेगा मन दे देंगे, तन मांगेगा तन दे देंगे, और तीनों मांगेगा तीनों दे देंगे। क्योंकि वह भी पढ़ा लिखा सियाना था कि कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। तो राजा ने ये कहा कि हम मन भी दे देंगे, तन भी दे देंगे, सारा राज्य पाठ दे देंगे, यदि मुझको कोई ब्रह्म ज्ञान करा दे, और उसके शरण में मैं जाने को तैयार हूं। बड़े बड़े संत, विद्वान, ब्राह्मण, ज्योतिषी, सारे लोग दरबार में पहुंचे। साथ में यह भी शर्त रखा था, यदि कोई ज्ञान मुझको नहीं कराएगा और वादा करेगा ज्ञान कराने का, तो उसको जेल में भी डाल देंगे। सात संगत जी, एक अष्टावक्र नाम का लड़का 13 साल का, जिसका शरीर 13 है, 8 अंग उसके टेढ़े थे, वह अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा पिता राजा के कैद खाने में बंद है, क्योंकि उसने दावा किया था कि मैं ज्ञान करा दूंगा आत्मा का, तुमको ब्रह्म ज्ञान दूंगा। उनको धन का लालच था, लेकिन वो ज्ञान नहीं करा सके, उनको जेल में डाल दिया राजा ने। 13 बरस का लड़का अष्टावक्र कहता है, माँ राजा को मैं ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा। माँ कहती है, बेटा तुम भी जेल में चले जाओगे, मैं अकेली हो जाऊंगी। अष्टावक्र कहता, माँ चिंता ना करो, साथ संगत जी यदि मन में जिज्ञासा हो, लगन हो, तपस्या हो, साधना हो, नाम सुमरण हो, तो किसी भी आयु में परमात्मा पाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 70 साल के हो गए तो तभी परमात्मा को पाना है। 5 साल का ध्रुव परमात्मा को पा लिया और 80 साल के लोग धूप में दाढ़ी सुख पका लेते हैं, फिर भी परमात्मा को नहीं पा पाते। जिसके अंदर लगन है, जो संत के शरण में गया है, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। जो संत के शरण में, गुरु के शरण में गया है, अहंकार को त्याग करके उसको परमात्मा की अनुभूति हो ही जाती है। अष्टावक्र राज दरबार में गया, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। जब अष्टावक्र प्रवेश किया राज दरबार में तो सारे विद्वान उसको देख करके हंस पड़े। वो सीधा अष्टावक्र राजा के सिंहासन के पास गया, क्योंकि भय काहू को देत नह, नह भय मानत आन, कहो नानक सुनरे मना ज्ञानी ताहे बखान। वो ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी था। वो अष्टावक्र राजा जनक को कहता है, जनक मैंने सुना है तुमने विद्वानों को बुलाया है, महापुरुषों को बुलाया है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं तुमने तो चमारों को बुलाया है। सारे लोग हैरान हो गए, चुप हो गए। हे राजन, घड़े के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, इसलिए हे राजन यह शरीर एक घड़ा है और इस शरीर के टेढ़ा मेढ़ा होने से ब्रह्म ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। हे राजन, यदि किसी को देखना है तो मेरे ब्रह्म ज्ञान को देखे, इस शरीर को ना देखे। ये सारे जो बैठे हैं हमारे शरीर को देख के हंसते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग चमार ही हैं। हे राजन, यदि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो श्रद्धा और भक्ति से तुम मेरे चरणों में आ जाओ। राजा को ये आभास हो गया कि ये लड़का कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म ज्ञानी। साध संगत जी देखो, राजा जनक की आयु 60 वर्ष की है, अष्टावक्र की आयु सिर्फ 13 वर्ष है। वो बहुत सत्कार से राजा जनक राज सिंहासन से नीचे उतरता है और 13 वर्ष के बालक को राज सिंहासन पर बैठा करके आप लंबे पड़ के नमस्कार करता है राजा और पूछता है, कथम ज्ञानम अवापनोति, मुझको ज्ञान कैसे हो, कथम मुक्ति मिच्छसि, मेरी मुक्ति कैसे होगी। और ज्ञान मुक्ति वैराग्य के बगैर नहीं होता, इसलिए मेरे मन में वैराग्य कैसे पैदा हो। कथम ज्ञानम अवापनोति, कथम मुक्तिम इच्छसि, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभु। वो कहता है, हे गुरुदेव, हे प्रभु, मुझको वैराग्य कैसे हो, क्योंकि बिन वैराग्य ना छूटस माया, और वैराग्य के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता तो ज्ञान कैसे हो, और ज्ञान के बगैर, ब्रह्म ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती तो हमको ब्रह्म ज्ञान कैसे, मैं मुक्त कैसे होऊंगा। वहां पर 13 वर्ष का बालक उपदेश करता है, हे राजन मुक्तिम इच्छसि चेतात, क्योंकि वो शरण में गया है। आज राजा जनक संत के शरण में गया है, ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪੜੇ ਸੋਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ। ਉਹ ਸੰਤ ਤੇਰਾ ਬਰਸ ਕਾ ਬਾਲਕ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਮੁਕਤਿਮ ਇੱਛਸੀ ਚੇਤਾਤ ਵਿਸਿਆਨ ਵਿਸਵਤ ਤਿਅਜ। ਜਦੀ ਤੁਮੇ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੋ ਵਿਸ਼ਿਓ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਬੰਧਨ ਕਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਇਹ ਪਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਪਾਂਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਨ ਪਾਂਚ ਵਿਸ਼ਿਓ ਕਾ ਸਦੈਵ ਸੇਵਨ ਕਰਤੇ ਰਹਤਾ ਹੈ। ਆਂਖ ਰੂਪ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਲਾਲਾਇਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਕੋ ਦੇਖੂੰ। ਕਾਨ ਸ਼ਬਦੋ ਕੋ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਮੀਠੇ ਮੀਠੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਲਾਲਾਇਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣੇ ਕੋ, ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਸਕੇ ਲੈਣੇ ਸੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਵੀ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੌੜਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਸਿਕਾ ਨਾਕ ਗੰਧ ਕੋ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲਾਲਾਇਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਮੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਠੋਰ ਕੋਮਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਬਿਸਤਰ ਹੋ ਉਸ ਪਰ ਸੋਏ ਆਨੰਦ ਲੇ। ਇਹ ਪਾਂਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪਾਂਚ ਵਿਸ਼ਿਓ ਕੋ ਸੇਵਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਦਾ ਲਾਲਾਇਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ ਪਾਂਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਓ ਸੇ ਵਿਸ਼ਿਓ ਮੇ ਆਸਕਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਓ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾਓ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਓ ਕੇ ਚੰਗੁਲ ਮੇ ਫਸਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਉਸਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਵਹਾਂ ਪਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਹਤੇ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਮੁਕਤਿਮ ਇੱਛਸੀ ਚੇਤਾਤ ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਵਿਸਵਤ ਤਿਅਜ। ਜਦੀ ਤੁਮੇ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੋ ਵਿਸ਼ਿਓ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੋ, ਔਰ ਪਾਂਚ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਪਾਂਚ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਛਮਾ। ਹੇ ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਸ਼ਿਆ ਮਨ ਮੇ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਟੋਕਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਕੀਆ, ਸਮੇਂ ਆਨੇ ਪਰ ਹਮ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਸਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਛਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਛਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਦੀਆ, ਹਮ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ 100 ਗਾਲੀ ਦੇਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾ ਟੋਕਰੀ ਮੇ ਭਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਝ ਮਨ ਮੇ। ਸਾਸ ਬਹੂ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਬਹੂ ਕੋ ਸਾਸ ਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੇ ਫਸਾ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਹਤੇ, ਹੇ ਜਨਕ ਛਮਾ, ਛਮਾ ਕੋ ਠੀਕ ਸੇ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੀ ਤੁਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹਤੇ ਹੋ, ਜਦੀ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ, ਤੋ ਜਦੀ ਤੁਮਸੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਛਮਾ ਮੰਗ ਲਓ, ਔਰ ਜਦੀ ਅਗਲੇ ਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਛਮਾ ਕਰ ਦੋ। ਦੋ ਬਾਤੇ, ਜਦੀ ਸਵੈਮ ਸੇ ਗਲਤੀ ਹੁਆ ਹੈ ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਛਮਾ ਕਰ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਛਮਾ ਕਰ ਦੋ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵੀ ਛਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੀ ਢੰਗ ਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਮਨ ਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਕੋ ਛਮਾ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਮਾ ਸੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਛਮਾ ਦਇਆ, ਔਰ ਚਿੱਤ ਮੇ ਦਇਆ ਹੋ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੀਵੋ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਐਸਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਹੋ। ਕਭੀ ਕਭੀ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਆਦਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵਿਅੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਚਨ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਜੈਸਾ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਧ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਕੋ, ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੋ ਐਸਾ ਚਾਹ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਭੀ ਕਭੀ ਬਹੁਤੋਂ ਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਮਨੇ ਬੀਜੋਗੇ ਵਹੀ ਤੁਮਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀਵੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਛਮਾ ਦਇਆ ਔਰ ਆਰਜਵ। ਆਰਜਵ ਕਾ ਭਾਵ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਰਲਤਾ, ਜੀਵਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। चार पैसे आ गए हैं तो अकड़ के नहीं जीना है, जवानी है तो अकड़ के नहीं जीना है, यदि परमात्मा ने सुंदर रूप दिया है तो अकड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे जो है एक बुलबुले के समान है, अभी दिख रहा है अभी समाप्त हो जाना है। संसार में जो भी कुछ दिख रहा है, ये चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका कोई भरोसा नहीं, ना ठेड़े दिन चार, ये चार दिन में जो है समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए जीवन को बहुत सरल क्षमा आर्जव दया तोष और संतुष्ट जीवन, आए हरख न गए सो, तुमको प्रारब्ध के अनुसार जितना प्रभु ने दिया है उसमें संतोष रखना। यदि भाग्य में नहीं है तो ब्रह्मा जी भी किसी को एक डॉलर दे नहीं सकते, और यदि तुम्हारे भाग्य में कुछ है तो ब्रह्मा भी रोक नहीं सकता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए हमें कृत करना है और वाहेगुरु पर भरोसा करना है। कृत करने का हमें अधिकार है, फल का अधिकार वाहेगुरु के हाथ में है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म ने वाधिकार अस्ते मा फलेशु कदाचना, हे अर्जुन तुम कर्म करो निष्काम भाव से, और जितना फल देना है हमें हमने देना है। मनुष्य के हाथ में है कर्म करना, लेकिन कर्म करते वक्त बहुत विचारना है कि हम ऐसा कर्म ना करें, क्योंकि वही लौट के ज्यादा आना है अपने पास। हम किसी का थोड़ा निंदा करेंगे हमको बहुत ज्यादा निंदा मिलेगा, हम किसी को माड़ा बोलेंगे हमको माड़ा मिलना है, और कोई थोड़ा सुख देता है किसी को उसको बहुत सुख मिलता है। इसलिए कर्म के प्रति सावधान होना बहुत जरूरी है। संतुष्ट, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वह योगी है जो संतुष्ट होकर के रहता है, और नानक सर में तो संतोष की बड़ी महानता है। नानक सर की एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ की निरोल भक्ति है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, नहीं तो बड़े बड़े स्थानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और जगह जाओ लोग आपस में झगड़ते हैं। यहाँ तो 2 बजे सुबह से लेकर के हमारे आदरणीय श्री महंत रंजीत जी आशा दीवार का कीर्तन करते हैं, और आदरणीय विकर जी, और जितने भी संत हैं, बहुतों को मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका जो है छवि हमारे हृदय में है, हमारे लिए सारे आदरणीय हैं। और जितने भी यहाँ के जो ट्रस्टीगण हैं, वो ट्रस्टीगण नाम के हैं, वो सब आपस अपने को सेवादार करते हैं, इतनी नम्रता है इनके अंदर। तो ये जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर निरोल भक्ति है, निरोल ज्ञान है। जो व्यक्ति यहाँ आ गया समझो बैकुंठ आ गया, बैकुंठ कहीं और नहीं, यह गुरुद्वारा ही बैकुंठ है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, यदि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो क्षमा आर्जव दया तोष संतुष्ट होकर के जीवन को व्यतीत करो और सत्य का पालन करो। सत्यम परम धीमहि, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हे जनक, तुम सत्य के मार्ग पर चलो, अंत में सत्य की ही विजय होती है, झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता, झूठ थोड़ा देर जो है चमकता तो है, और लोग कोशिश करते हैं, यदि किसी को नकली नोट हाथ में आ जाए ना तो वो कोशिश करता है जल्दी इसको चलाएं, क्योंकि असली तो पता ही है वो चल ही जाना है, और जिसके हाथ में जाता वो भी सोचता है किसी तरह आ गया हमारे हाथ में, उसको किसी तरह आगे जो है कुछ सामान खरीदने के बहाने या किसी तरह से। लेकिन झूठ की गति ने आज एक ने एक दिन पकड़ा जाता है, और सत्य तीनों कालों में, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी में सच। वहां पर जब राजा जनक को अष्टावक्र जी ने उपदेश किए, उनके उपदेश से राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान हो गया। इसलिए सासंग जी, संत शरण जो जन परे सो जन उधरन हार। यदि तुम ये अपना कल्याण चाहते हो, ये चाहते हो कि इस अमोलक शरीर को पाकर परमात्मा को पाले, तो संत महापुरुष के शरण में जाना है, सत्कार करना है, उनसे ब्रह्म ज्ञान पूछना है। उनके पास जाकर के सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की ही चर्चा करो, साधना की चर्चा करो। और संत महापुरुष तभी खुश होते हैं जब तुम साधना पूछते हो। संसार की बातें पूछने पर वो ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। आगे साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि जीवन का दो पक्ष है, एक पक्ष है संत के शरण जाना और दूसरा पक्ष है संत की निंदा करना। यदि मोक्ष चाहते हो तो संत के शरण में जाओ, और यदि नरक जाना चाहते हो तो संत की निंदा करो, संत को दुख दो। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे उपदेश कर रहे हैं, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए। जो संत को दुख देता है, क्योंकि संत तो नित्य अवतार होते हैं ना, चलते फिरते तीर्थ होते हैं, उनका ये उद्देश्य होता है कि लोगों को कल्याण करना। उनका ये उद्देश्य होता है कि जो ज्ञान हमको महापुरुषों से मिला है वो लोगों को बांटें। उनके अंदर दया होता है, करुणा होता है। इसलिए सासंग जी, संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए। जो संत को दुख देता है उसका रूप बिगड़ जाता है, कोढ़ हो जाता है। बिगड़ रूप का मतलब उसका जो मुंह है वो खराब हो जाता है। यहाँ तो साफ लिखा हुआ है, बिगड़ रूप का मतलब कोढ़ ही लिखा है, कुष्ठ रोग हो जाता है जो संत को दुख देता है। संत के दोखी को दरगाह मिले सजाए, उसको दरगाह में जो है उसको बहुत सजा मिलता है। हजार हजार बिच्छू उसको डंस मारते हैं जो संत को दुख देता है। संत का दोखी सदा सहकाइये। सहकाइये का मतलब होता है वह जो संत को दुख देता है उसका जो मन है वो हमेशा छटपटाता रहता है, तड़पता रहता है। कहीं जाता उसको शांति नहीं मिलता, घर आने पर शांति नहीं, बाहर जाने पर शांति नहीं। हमेशा जैसे मछली को बाहर कर दो पानी से तड़पड़ाता है, ऐसे ही संत का दुखी सदा सहकाइये वो हमेशा तड़पड़ाते रहता है, अशांति में जीता है, दुख में जीता है। संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, उसका ये हालत होता है। आप देखो कभी कभी हॉस्पिटलों में जाओ, उसको कैंसर का जब रोग हो जाता है, बड़ा फोड़ा हो जाता है कैंसर का, उसको इतना दर्द होता है वो डॉक्टर से कहता है मुझको जहर का टीका लगा दो, लेकिन वो लगा नहीं सकता। उसको पेन किलर देते हैं, चार घंटा पाँच घंटा असर करता है, फिर वो दर्द के मारे तड़पता है। इसका मतलब है कि उसने पूर्वजन्म में किसी संत को दुख दिया है। संत का दोखी ना मरे ना जीवाइए, वो ना मर रहा है और ना जिंदा है, बीच में ही जो है तड़पड़ा रहा है। संत के दोखी की पूजय ना आशा। जो संत को दुख देता है उसकी आशा पूरा नहीं होता। आशा क्या है? यदि जगत की आशा है तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आशा नाम वासना का है। हर एक मनुष्य के अंदर एक आशा है कि कल हम सुखी होंगे, शादी हो जाएगा तो सुखी होंगे, बच्चा हो जाएगा तो सुखी होंगे, अपना मकान हो जाएगा तो सुखी होंगे। और क्या सोचता है कि जो 25 साल का लोन है ना ये खत्म हो जाएगा तो सुखी होंगे। हर एक आदमी कल सुखी होना चाहता है, और मैं कहता हूँ कि जो प्रभु का सुमरण करता है वो आज सुखी है, अभी सुखी है। जो संत के शरण में आ गया वो फॉर दिस मोमेंट सुखी है। उसके लिए सुख भविष्य नहीं होता, उसके लिए सुख वर्तमान होता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, संत के दोखी की पूजय ना आशा। जो संत को दुख देता है उसकी आशा कभी पूरी नहीं होती, उसकी हर एक आशाएं बीच में ही अटक जाता है, वो निराश होकर के इस संसार से जाता है। निराश का भाव है दुखी होके जाता है और उसकी अगली जूनी भी खराब होती है। संत का दोखी उठ चले निराशा, वो इस संसार से निराश होके जाता है, अर्थात वह दुखी होके जाता है, मायूस होके जाता है, हाथ मलते जाता है। संत कै दोख न तृष्टय कोए, जैसा भावे तैसा कोई होए। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, संत कै दोख न तृष्टय कोए, जो व्यक्ति संत को दुख देता है उसका टिकाव कहीं नहीं होता, कहीं टिकता नहीं, वो जहां जाएगा भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। तृष्टय माने ठहराव नहीं होता उसको, भटकना ही लगा रहता है उसका। संत कै दोख न तृष्टय कोए, जैसा भावे तैसा कोई होए, क्योंकि उसकी जो भावना है वो शुरू से भावना ही गलत है। गौंड राग में भगत रविदास जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं जो संतों को दुख देता है, जे ओह 68 तीर्थ नावे। यदि कोई संतों को दुख देता है और 68 तीर्थों में स्नान करता है, कोई फायदा नहीं। जे ओह 68 तीर्थ नावे, जे ओह 12 शिला पुजावे, जे ओह कूप तटा देवावे, करे निंद सब वृथा जावे। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे। जो व्यक्ति संत को निंदा करता है वो जितनी मर्जी साधना कर ले, जितना मर्जी दान दे दे, जितनी मर्जी सेवा कर ले, सब व्यर्थ जाता है। जैसे कोई स्त्री का पति मर जाए और जितना मर्जी श्रृंगार कर ले, उसका श्रृंगार का क्या अर्थ है? जीव रूपी पति जो है वो शुभ गुणों रूपी श्रृंगार इसलिए करता है कि हमें पति परमात्मा मिल जाएगा। समझे? श्रृंगार का लाभ तभी है जब परमात्मा पति हमारा प्रसन्न हो। जब पति ही नहीं प्रसन्न हुआ तो श्रृंगार का क्या लाभ है? इसीलिए सत्संग जी साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, संत कै दोख न तृष्टय कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए। यदि कोई व्यक्ति के अंदर भावना ही गलत है कि संतों को दुख देना है तो उसका फल भी वही मिलता है, दुख ही मिलता है। साध का निंदक कैसे तरह? गुरु रविदास जी कह रहे हैं, रविदास भगत जी, के साध का निंदक कैसे तरह, सर पर जानो नरक ही पड़े। जो साधु संत महापुरुष की निंदा करता है वो समझो अपने सिर के ऊपर नरक ले आया। जे वो ग्रहण करे कुल खेत, मान लेते हैं कोई आदमी कुरुक्षेत्र में जाके चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का स्नान करता है, अर्पय नार सिंगार समेत, और सारी संपत्ति दान में दे देता है। सगली स्मृति श्रवणी सुने, और 28 स्मृतियां, 4 वेद, 6 पुराण, 27 स्मृतियां वो किसी महापुरुष से सुनता भी है, लेकिन संत का निंदा किया है, कहते वो सब व्यर्थ जाता है। करे निंद कवने नहीं गुने, जे ओह अनक प्रसाद करावे, भूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांढे, करे निंद बह जोनी हांढे। जो व्यक्ति संतों को निंदा करता है उसको बार बार जन्मना, बार बार मरना और नीच जूनियों में जाता है। निंदा कहाँ करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक शोध साध बिचारिया, कह रविदास पापी नरक सिधारे। सीधी सी बात है, जो अपना कल्याण चाहता है वो संत के शरण में जाए, और जो दुखी रखना चाहता है अपनी जिंदगी को, जो अपना लोक परलोक खराब करना चाहता है वो संत का निंदा करे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, पया किरत न मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उन लोगों को कह रहे कि बेचारा अज्ञानता के कारण निंदा कर ही दिया है, तो क्या किया जाए। अब तो एक ही है कि महापुरुषों के पास जाकर के अपने अवगुणों को बख्शा ले। पया किरत न मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि जो सच्चा परमात्मा है ये सब कुछ जानता है। सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। सबके हृदय का जो करने हार है प्रभु परमात्मा वाहेगुरु सच्चा पातशाह, सदा सदा ऑलवेज उसको नमस्कार करें, अरदास करें, हे सच्चे पातशाह हमसे गलती हो गया है। क्योंकि गुरु महाराज ने वचन दिए हैं, प्रॉमिस किए हम लोगों से कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जब उन्होंने हम लोगों को प्रॉमिस किए कि जो मांगोगे वही दूंगा, तो उनके आगे जो है उनके चरणों में बैठकर रो ले के सच्चे पातशाह हमसे गलती हो गया है, हमने अज्ञानता के कारण संतों को निंदा किया है, अब हमको जो है पिछले अवगुण को बख्श दो और आगे के लिए हमें सच्चा राह दो, सच्चा मार्ग जाने के लिए हमें शक्ति दो। सदा सदा तिसको नमस्कार, उस प्रभु परमात्मा को नमस्कार करना है जो सबके हृदय को जानने वाला है, करने वाला है, सबको पैदा करने वाला है। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसह ध्यावो सांस गिरास। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, एक तो है उस्तत जगत की, जगत की उस्तत करोगे तो तुम्हें विषय की प्राप्ति होगी, और विषय की प्राप्ति होगी तो अहंकार आएगा, और अहंकार आएगा तो नाश होगा। यदि तुम जगत के पिता की उस्तति करोगे तो शांति आएगी, आनंद आएगा, ब्रह्म ज्ञान आएगा, और ब्रह्म ज्ञान आने पर तुम्हारा कल्याण होगा। सीधी सी बात है, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, प्रभु की उस्तत करो दिन रात। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जीवन की सच्चाई को, जीवन के रहस्य को बता रहे हैं कि रात दिन यदि उस्तत ही करना है तो एक निरंकार, एक वाहेगुरु जो सच्चा पातशाह है उसकी उस्तत करना है। और गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु की उस्तत, परमेश्वर की उस्तत, क्योंकि गुरु और परमात्मा दोनों एक होते हैं, गुरु परमेश्वर एको जान। और साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर की यात्रा में हैं, वहाँ पर एक सिख बुद्धू वह सारे संगत को, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी के साथ करीब 100-200 लोग हैं, सिख हैं, सबको अपने घर को बुलाया, प्रेम से भोजन छका करके साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक सिख को कहते हैं, अरदास करो भाई इसके कल्याण के लिए, क्योंकि उसको कई साल से न उसका आवा जो है वो कच्चा रहता था, वो कुम्हार था, वो जो भी ईंट बनाता था वो कच्चा रह जाता था, हर एक साल उसको घाटा लगता था, बहुत दुखी था परिवार। पहले के लोगों में ने मर्यादा थी कि संत महापुरुषों को घर बुलाते थे और बहुत प्रेम से उनका सत्कार करते थे और भोजन छका करके उसकी खुशियां लेते थे, कुछ ज्ञान सुनते थे, कुछ प्रवचन सुनते थे। आज भी बड़े अच्छे अच्छे सत्संगी हैं, और खास करके नानक सर गुरुद्वारे में जो आते हैं वो लगभग वो सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि जैसे महापुरुष जो आगे होते हैं रास्ता दिखाने वाले, धन धन बाबा गुरुदेव सिंह जी महाराज हम लोगों को एक ऐसे रास्ता दिखा रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर हम लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हुक्म किए कि भाई जाओ, तेरा आवाज जो है सो पक्का होगा। एक सिख बाहर से आया, वो कई एक दिन का भूखा था, वो बोल पड़ा कि नहीं नहीं तुम्हारा आवा कच्चा रहेगा। वहां पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि वो सिख ने बोला है कच्चा रहेगा कच्चा रहेगा, तो भाई बुद्धू तुम्हारा जो आवा है वो तो कच्चा ही रहेगा। वो चरणों में गिर के रोने लग पड़ा, सच्चा पातशाह मैं आपका ओटा सरा लिया, कई एक साल से दुखी हूं, आप तो गुरु हैं समर्थ हैं, गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है, एक सिख का वचन सत्य होगा आपका झूठ हो जाएगा? कहते हाँ, हमने सिख को महानता दिया है कि हमारा वचन झूठ हो सकता है, सिख का वचन झूठ नहीं हो सकता। वहां पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं तुम चिंता ना कर, आवा तो तेरा कच्चा रहेगा लेकिन बिकेगा पक्के से भी ज्यादा कीमत में, तो तुम्हें कच्चा और पक्का से क्या लेना, तुम्हें तो सिर्फ कैश नोट से जरूरत है। और सच्चाई हुआ, उस साल बरसात बहुत हुआ और बरसात होने के कारण ईंट कुछ नहीं मिला, कच्चा ईंट भी नहीं मिला, लोगों ने पक्के से ज्यादा कीमत में जो है सो कच्चा ईंट ले गया उनसे, और बुद्धू सा माला माल हो। भाव यह है कि संत शरण जो जन पर है सोजन उधरन हार, उसका कल्याण ही कल्याण है। चार पदार्थ जेको मांगे साध जन की सेवा लगे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, प्रभु की उस्तत करह दिन रात तिसह ध्यावो सास ग्रास। ध्यान के क्लास में यही चीज बताई जाती है, जो जो लोग ध्यान के क्लास में आए उनका जीवन इतना ऊंचा हो गया, पवित्र हो गया है, कितने लोगों को गुरु अर्जन देव जी का साहेब का दर्शन तक हुआ है। वहां पर सांस गिरास कैसे वाहेगुरु का सुमरण करना है इसी रहस्य को बताई जाती है। प्रभु की उस्तत करह दिन रात तिसह ध्यावो सांस गिरास, एकांत में बैठकर शरीर को स्थिर करके पहले बोल करके वाहेगुरु का सुमरण करना है, और बाद में श्वास अंदर जाए तो वाहे, श्वास बाहर जाए तो गुरु। साधना के द्वारा सिद्धि मिलती है, गप्पा नल नहीं मिलता समझे, या लोगों के बात बीच में बैठ के नहीं मिलता। जितना ज्यादा साधना करोगे, जितना ज्यादा कमाई करोगे, लोगों के पास ज्यादा बैठने से ऊर्जा खराब होता है। ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद रखना है, कम बोलना है, और एकांत में बैठ करके प्रभु का सुमरण करना है, ध्यान करना है। सांस ग्रास, श्वास अंदर जाए तो वाहे, श्वास बाहर जाए तो गुरु। जब श्वास के द्वारा सुमरण करोगे बहुत समय तक, तो एक बार सिर्फ आंख बंद करके बैठोगे तो देखोगे अंदर कोई सुमरण कर रहा है, ऐसी स्थिति आ जाती है। सुमरण मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। एक मलुक भगत हुए हैं, उनकी ऐसी ब्रह्म दशा आ गई कि ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभु बिना नहीं जाने। जो व्यक्ति प्रभु को सांस सांस सिमरन करता है उसकी ऐसी अवस्था आ जाती है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, सब कछ वर्तय तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। इस संसार में जो भी वर्त रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, एक पत्ता भी जो हिल रहा है, यह प्रभु के हुक्म से मिल रहा है। जैसा वो करता है, जैसा उसको भाता है, जैसा वो चाहता है, जैसा ईश्वर इच्छा करता है, वैसा ही होता है। सब कछ वर्तय तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अर्थात हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए। सब कुछ परमात्मा के हुक्म से चल रहा है, और टोटल एक्सेप्टेंस का भाव ये है कि प्रभु के हुक्म को सत सत करके स्वीकार कर लेना, और इस संसार में कृत करना है, वंड छकना है, नाम जपना है, और प्रभु को भाना को सत करके मानना है। ऐसा जो जीवन जीता है वह व्यक्ति कल्याण को प्राप्त होता है, सुखमणि को प्राप्त होता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, अपना खेल आप करना हार, दूसर कौन करे विचार। ये जो सारा संसार है ना, ये प्रभु की लीला है, खेल है। जल तरंग और फेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, यह परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। एक जो प्रभु परमात्मा है निरंकार, वही सबके अंदर जो है आत्मा रूप से विराजमान है, वो उसका खेल है, प्रभु का खेल है ये जगत। अपना खेल आप करने हार, परमात्मा जो है खेल करता है, ये जगत उसके लिए खेल करने का स्थान है ये। और हम लोगों को जो है ना पैदा करके फिर समाप्त करके, कभी वो चाहता है तो सुनामी लहर ला देता है, एक एक लाख आदमी को एक बार में समेट के ले जाता है, और फिर वो चाहता है तो बारह बारह चौदह चौदह बच्चे पैदा करता है, आनंद लेता है, किसी को बीमार कर देता है, किसी को खुशियां रख। ये सब कुछ जो है ना सो प्रभु का खेल है। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। दूसरा उस प्रभु परमात्मा की लीला के बारे में कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उसकी कथा अनंत है, उसकी लीला अनंत है, क्योंकि परमात्मा बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई आदि अंत नहीं है। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति संत के शरण में जाता है, परमात्मा उसके हृदय में नाम दान देते हैं, क्योंकि अब कलु आयो रे एक नाम बो बो। जो नाम का सुमरण करता है, प्रभु के नाम का, उसको नामी प्राप्त होता है। नामी नाम ईश्वर का है, नामी नाम प्रभु का है, वाहेगुरु का है। जिसनो कृपा करे तिस आप नाम दे। नाम जो है ना एक जहाज है, नाम रूपी जहाज पर चढ़ करके व्यक्ति परमात्मा के धाम में जाता है। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। कहते हैं वह व्यक्ति बहुत भाग वाला है, उसके भाग बहुत अच्छे हैं। जो व्यक्ति परमात्मा का सुमरण करता है, परमात्मा का ओट आसरा रखता है और संतों के शरण में जाता है, संतों के शरण में जाने से उसको प्रभु का अमोलक नाम प्राप्त होता है, और अमोलक नाम मिलने पर यदि कोई भक्त प्रभु का नाम लेता है, सुमरण करता है, तो उसका कल्याण होता है, जिससे उसका लोक सुखे परलोक सुहेले। नानक हर प्रभु आपे मिले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।